शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति 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 ही। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव एवं सद्गुरु देव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद सत्संग प्रेमी श्रद्धा भक्तिमय माताओं सज्जनों, प्रतिदिन के प्रवचन में आप अलग अलग विषयों पर सत्संग श्रवण करते हैं। गत कुछ वर्षों से ईशादी उपनिषदों पर प्रवचन नवंबर में जो एक पक्ष के लिए मैं आता रहा तो होता रहा, इस वर्ष से जनवरी में यह कार्यक्रम बना। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद तथा कठोपनिषद का प्रवचन सत्र में दो वर्ष पहले ही विचार संपन्न हुआ है। गत वर्ष प्रश्न उपनिषद का प्रवचन सत्र में विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम प्रश्न का विचार हो भी गया था, द्वितीय प्रश्न के कुछ मंत्रों की चर्चा कर चुके थे हम लोग। भूमिका के तौर पर उपनिषद शब्द का ऐसे वाचार्थ हुआ करता है जो आपके संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दे, उसे कहा जाता है उपनिषद। संस्कृत में जो शब्द बनते हैं व्याकरण के अनुसार कुछ धातुओं से बनते हैं, और उपनिषद शब्द में उपनी उपसर्ग पूर्वक सद धातु है जिसका विशरण गति और अवसाद ये तीन अर्थ होते हैं। विशरण शब्द का अर्थ है विनाश, गति का अर्थ है गति यानी गमन, प्राप्ति और ज्ञान, तीनों अर्थ निकलते हैं उसके। और अवसादन कहते हैं शिथिलता को। तो ये तीन अर्थ उपनिषद में जो सद धातु हैं उसके होते हैं। धातु से जो प्रत्यय हुआ करता है उसका भी कुछ अर्थ निकलता है। तो क्विप प्रत्यय होकर के जो सद उपनिषद शब्द बना है तो उसका अर्थ होता है, उप का अर्थ है समीप में, नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक, और सद का अर्थ निकलेगा विनाश करने वाला। समीप में रह करके जो आपके जन्म मरण रूप संसार का कारण है अविद्या, काम और कर्म, इसे नष्ट कर दें, इसका विशरण कर दें, विनाश कर दें, उसे उपनिषद कहा जाएगा। तो जिसको नष्ट करना है उसके पास में ही प्रकट होकर के जो इन तीनों को नष्ट करें। तो पहले ये निश्चित हो करना होगा कि ये तीनों रहते कहां हैं। जन्म मरण के हेतु अविद्या, काम और कर्म, ये रहते कहां पर हैं, इनका रेसिडेंस कहां है, हाँ हाँ अंतकरण। तो अंतकरण में रहते हैं, मन बुद्धि में रहते हैं, अज्ञान भी बुद्धि में रहता है। और अज्ञान का कार्य जो विपरीत ज्ञान है वो भी कहां रहेगा, बुद्धि में, बुद्धि विपरीत हो जाती है। है आत्मा वेदांत शास्त्र के अनुसार सच्चिदानंद रूप, अभी ब्रह्मास्मि चिंतन माला के जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, ऐसे तो हरेक मंत्र के श्लोक के अंत में चतुर्थ पाद ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ऐसा ही आता है ना, का अर्थ है कि अहम यानी आत्मा, मैं वस्तुतः कौन हूं, ब्रह्म। ऐसा प्रेमपुरी जी महाराज ने जीवन भर समझाया उस समय के जिज्ञासुओं को, और आने वाले जिज्ञासु भी अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझे, इसके लिए ये चिंतन माला बना करके रखी है कि हम वस्तुतः ब्रह्म है। लेकिन उस ब्रह्म का इस समय बोध हमें नहीं है मैं के रूप में। मैं को तो जानते हैं, अहम को तो हम जानते हैं, अहम अर्थ को। ऐसा कोई नहीं संसार में प्राणी जो अपने आप को न जाने। अहम अर्थ का ज्ञान सबको है, लेकिन हाँ सबको एक जैसा ज्ञान नहीं है ना। मनुष्यों को अहम अर्थ का ज्ञान है, मैं मनुष्य हूं इस रूप में, और देवताओं को ज्ञान है मैं देवता हूं, ब्रह्मा जी को मैं ब्रह्मा हूं, और पशुओं को मैं पशु हूं। तो ये सब जो हैं 84 लाख प्रकार के शरीर, इन शरीरों की यात्रा आपकी हमारी अभी तक कई बार हो चुकी है। अनादि संसार में असंख्य काल से कितने जन्म अभी तक हुए और कितने होने वाले हैं, कहा जा सकता है, बता सकते हैं कि इतने ही जन्म हुए हैं, इतने अरब नहीं बताया जा सकता। इसलिए नहीं बताया जा सकता कि संसार अनादि है और स्वरूप का अज्ञान भी अनादि है। उस अनादि अज्ञान से हमने अनादि काल से इस संसार में असंख्य जन्म लिए हैं और जो भी शरीर मिला उस शरीर को ही मैं मान लिया और वो शरीर को मैं मानना इसे भी अविद्या कहा जाता है। लेकिन ये विपरीत विद्या है, विपरीत ज्ञान है, इसे अध्यास भी कहते हैं, भ्रांति भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। तो अविद्या दो प्रकार की, एक मूल अविद्या और एक कार्य अविद्या। मूल अविद्या है अज्ञान, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं जानता हूं अपने आप को, ये अपने स्वरूप विषयक अज्ञान, ये है कारण अविद्या। और मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि रूप से अपने आप को जानना, इसे कहा जाता है अविद्या ही। लेकिन ये है विपरीत विद्या। अविद्या में अ के अ का विपरीत ये अर्थ भी निकलता है। तो विपरीत विद्या का मतलब उल्टा ज्ञान, जो अकर्ता है उसे कर्ता समझना, अभोक्ता है उसे भोक्ता समझना, जो जन्मादि षड़ विकारों से रहित है उसे जन्मादि षड़ विकार रूप समझना, ये भ्रांति। आत्मा को कठोपनिषद भी और गीता भी और सभी उपनिषदें बताती हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित आत्मतत्व है। और उस जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित आत्मतत्व को न जान करके हम अपने आप को जन्मादि युक्त समझ रहे हैं, ये है विपरीत ज्ञान, ये भी अविद्या है। और ये भी कहां है, मैं मनुष्य हूं ये निश्चय, मैं करता हूं भोगता हूं बुद्धि में, इसलिए अविद्या भी रहती है बुद्धि में। और फिर जब शरीर आदि को ही मैं समझेंगे, अपने आप को भोक्ता समझेंगे, तो जो इस लोक के अप्राप्त भोग हैं और अनुकूल समझते हैं, परलोक के अप्राप्त भोग हैं अनुकूल समझते हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा होगी, उसको कहा जाता है काम। और वो जो काम है, इच्छा है, भोग्य अहित पारलौकिक भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की, वह इच्छा फिर आपको कहीं गुफा में भी रहोगे एकांत में जाकर के, कि मुंबई में बहुत आबादी रहती है तो कहीं हिमालय की एकांत गुफा में जाकर के रहें, लेकिन ये कामना यदि हृदय में रहेगी आयिक पारलौकिक भोगों की, तो वहां पर भी आपको मन को ध्यान के माध्यम से एकाग्र करने में बाधक बनेगी वो कामना इच्छा, मन को एकाग्र नहीं होने देगी, समाधि नहीं लगने देगी। वह इच्छा, जिन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा है, उन पदार्थों की प्राप्ति के साधन में प्रवृत्ति उत्पन्न करेगी, क्योंकि रजोगुण तो चलनात्मक है ना, और रजोगुण से ही उत्पन्न होता है काम भी। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है वह रजोगुण के चलन यानी कर्म रूपी जो परिणाम है, कार्य है, उसमें प्रवृत्त करता है, जिसे इप्सित पदार्थ की प्राप्ति हो सके ऐसे साधन में प्रवृत्त करेगा। तो प्रवृत्ति से आपके प्रयत्न से जो पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कर्म हो रहे हैं उन कर्मों को कहा जाता है कर्म। वो कर्म फिर दो प्रकार के, शास्त्रीय अशास्त्रीय। कामना से प्रेरित होकर के किए गए जो शास्त्रीय प्रवृत्ति और अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप क्रियाएं हैं, व्यापार हैं, वे हैं कर्म। और वो इस अनादि संसार में अभी तक असंख्य जन्म हुए और सारे जन्मों से यही करते आ रहे हैं, यही कर्म होते आ रहे हैं। और उन सब कर्मों का फल भोगा अभी तक नहीं है वे कर्म। और इस जन्म में भी तो शांत थोड़ी बैठते हैं, इस जन्म में भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, वे भी क्रियमान कर्म है। तो वे संचित कर्म जिनका पहले हमने अनुष्ठान किया है लेकिन फलोपभोग नहीं हो चुका, ऐसे भी बहुत से हैं, अभी भी जो हो रहे हैं वे, और जिनका फलोपभोग कर रहे हैं वे प्रारब्ध कर्म, वे तो इसी जन्म में फल दे करके समाप्त होंगे। लेकिन संचित और क्रियमान कर्म इनके लिए तो कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों कल्प बीत जाते हैं लेकिन हमने करोड़ों कल्प पहले किया हुआ जो कर्म है वह हमारी बुद्धि में संस्कार रूप से अपूर्व बन करके स्थित रहता है, बना रहता है। कब तक बना रहेगा? कहते तब तक बना रहेगा जब तक उसका फलोपभोग नहीं होता, भोग से समाप्त होते हैं अज्ञानी के किए हुए कर्म। तो ये जो हमारे जन्म मरण का हेतु भूत अविद्या है, कर्म है और काम है, ये रहते कहां हैं? बुद्धि में, बुद्धि में ही रह रहे हैं। और उन्हीं के पास में उत्पन्न होकर के उनको जो समाप्त कर दें, निश्चित रूप से समाप्त करें, उसे कहा जाता है उपनिषद। तो ये बुद्धि में रहते हैं तो बुद्धि में ही उत्पन्न होकर के जो बुद्धिस्थ अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दें, माना जाएगा उसे उपनिषद। शब्द का अर्थ वो उपनिषद है, तो समीप में माना जाएगा आप, आपके समीप, आप तीसरे माले पे हैं अध्यात्म विद्या भवन के, तो तीसरे माले में इस सत्संग हॉल में जो जो है आपके समीप में है। लेकिन और भी निकट कौन माना जाएगा? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसी कुर्सी के पास में जो बैठा है वो आपके अत्यंत समीप में है। ऐसे अविद्या काम कर्म रह रहे हैं बुद्धि में, और उसी बुद्धि में जो रहेगा उसे कहा जाएगा इनके समीप। वो हो जाएगा बुद्धिस्त, जो जो भी है वो अविद्या काम कर्म के समीप है। उपशब्द का अर्थ निकलेगा उपनिषद में, समीप में। और नी का अर्थ है निश्चित रूप से, और सद का अर्थ है नष्ट करने वाला। तो समीप में रह करके अविद्या काम कर्म को निश्चित रूप से जो समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, उसका नाम है उपनिषद। वो कौन है? संसार के कारण तो ये तीनों है, अविद्या काम कर्म। संसार है जन्मना मरना, ये जन्म मरण होता किसका है? जिसके बुद्धि में ये तीनों रहेंगे तो उसका निश्चित रूप से जन्म और मरण होगा ही होगा। और ये जन्म मरण के हेतु अविद्या काम कर्म जिसके समाप्त हो गए, उसका फिर एक बार शरीर छूटेगा, दूसरे बार जन्म नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्म भाव, मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म भाव की प्राप्ति। तो अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दिया ब्रह्म विद्या ने, तो विशरण शब्द का अर्थ निकला। वो कौन करती है? ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ है, ब्रह्म विद्या तो गीता को भी कहा गया है। गीता के अध्याय के अंत में जो पुष्पिका आती है ना, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यासु, तो ब्रह्म विद्या ये गीता का एक विशेषण है। और लेकिन वो बुद्धि में है क्या? और उपनिषद इसको भी कहते हैं, इन ग्रंथों को भी। लेकिन ब्रह्म विद्या तो एक वृत्ति है, नहीं तो गीता मान लो याद कर दी किसी ने तो उसके मन में है, तभी तो मुख से बोलेगा। उपनिषद याद कर दी, उपनिषदों का पाठ कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, तो वो तो बोलेगा तो मन में रहेगा, तब न बोलेगा। तो ये मन में है, लेकिन उनके भी दो रूप हैं। एक तो ग्रंथ रूप, शब्द रूप, तो शब्दात्मिका नहीं है वो, उन शब्दों का जो अर्थ है, उस अर्थाकार जो वृत्ति है। तो उपनिषदों का अर्थ, भगवद गीता का अर्थ, ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या है? ब्रह्मात्म एकत्व, वेदांत का विषय जो होता है, माना जाता है उसे, उसका अर्थ। तो उपनिषदों का अर्थ, ब्रह्म गीता का अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व है, यानी अहम ब्रह्मास्मि है। तो चित्त में जैसे मैं गिरीश भाई ड्रेस वाला हूं, इसको याद रखना पड़ता है क्या आपको? बिना याद किए ही ये आता है, ये कार्यक्रम संघात इस नाम वाला, इतना सुस्पष्ट अहम वृत्ति उठते ही ये आ जाए कि मैं ब्रह्म हूं, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। तो ये जो अहम वृत्ति है ना, ब्रह्म को आपके वास्तविक स्वरूप को आलंबन करते हुए सहज बनने वाली अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार, इसका नाम है वस्तुतः उपनिषद, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या है, और यह वृत्ति ही अविद्या काम और कर्म जो जन्म मृत्यु के कारण है, इन्हें समाप्त करती है। यह वृत्ति जिसके बुद्धि में उत्पन्न, और यह वृत्ति बुद्धि वृत्ति है, और वो उत्पन्न होती है तत्वमशादी वाक्यों से, और तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति बुद्धिस्थ अविद्या काम कर्म को समाप्त करती है, उत्पन्न होती है बुद्धि में ही, और बुद्धि को बुद्धिस्थ इन तीनों को समाप्त करती है। जहां सूर्योदय होता है वहां रात्रिकालीन अंधकार तथा तज्जन्य भय समाप्त होता है, जहां प्रकाश होता है तो अपने उदय के साथ साथ समाप्त करता है। तो ये प्रकाश के तरह अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति उपनिषद शब्द का अर्थभूता बुद्धिस्त अविद्यारूप अंधकार और उसका कार्य कामना और कर्म को समाप्त करती है, नष्ट कर देती है। इसलिए उसे कहा जाता है विशरण करने वाली होने से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को उपनिषद। और गति का अर्थ होता है प्राप्ति, तो अर्थ निकलेगा समीप में रह करके जो आपको निश्चित रूप से प्राप्त करा दे। क्या प्राप्त करा दे? जो आपका खोया है उसे, वो प्राप्त करा दें। कुछ खोया है आपका, क्या खोया है? स्वरूप खोया है। और कब से खोया है? अनादिकाल से खोया है। तो जो अनादिकाल से हमारा खोया हुआ स्वरूप है, वह हमें हमारे पास में आकर के उपलब्ध करा दे, उसे कहा जाता है उपनिषद। वो गति अर्थ को लेकर के, तो वो जैसे ही अविद्या काम कर्म की निवृत्ति कराती है, अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति, तो आपको फिर ये शरीर रहने पर भी शरीर मय के रूप में प्रतीत न हो करके प्रतीत होगा ब्रह्म ही मय के रूप में। जो ब्रह्मास्मि चिंतन माला के अंत में चौथे पाद में बार बार प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज जो कहते हैं ना कि ब्रह्मास्मि, वो वही आपकी वृत्ति बनेगी हमेशा। फिर तो वह आपका खोया हुआ स्वरूप आपको उपलब्ध करा रही है, आपके बुद्धि में प्रकट होकर के अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति। इसलिए भी इसे उपनिषद कहा जाता है। ये उपनिषद है कि जो आपके समीप में रह करके निश्चित रूप से आपके खोए हुए ब्रह्म भाव को उपलब्ध करा दे, प्राप्त करा दे, वह उपनिषद। और अवसादन, अवसादन कहा जाता है शिथिल करने को। तो जो आपके अंदर यदि इतनी योग्यता नहीं है कि आप इसी जन्म में आपके ब्रह्म भाव को जान सके, लेकिन आस्तिक हैं, तो जैसे नचिकेता के पिता थे आस्तिक, वो जाना चाहते थे स्वर्ग में। और स्वर्ग कैसा है कि जैसे यहां पर मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है कब आ जाए, ऐसा वहां नहीं है। इसलिए नचिकेता कहते हैं कि स्वर्ग ऐसा है कि आप यमराज जी को की सहसा वहां प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वहां का निश्चित पुण्य है, तब तक वहां से गमन नहीं होता ना। जल्दी जल्दी जन्म मृत्यु नहीं होता वहां। एक बार पहुंच गया तो फिर कई मन्वंतर तक वहां रहते हैं, और यहां पर तो एक प्रकार से देवताओं का एक क्षण भी नहीं बीतता है, तो हमारे कहीं जन्म और मरण हो जाता है। का मतलब जाय सो मृय सो है, यही व्यापार है। बीच वाली स्थिति तो मनुष्य के काल के परिमाण के अनुसार 100 वर्ष की कितनी है, देवताओं का एक क्षण भी नहीं है, उतनी सी है। तो उतनी सी स्थिति में हमारे वो एक प्रकार से दो ही व्यापार देवताओं के हो सकते हैं, जन्मना या मरना। तो वहां पहुंचने के बाद जन्म मृत्यु शिथिल हो जाता है। तो आपके जन्म मृत्यु को शिथिल कर दे, जो शिथिल होगा, जो ठोस होता है ना, उसके अवयव बिल्कुल पास पास में आते हैं, घनीभूत होते हैं अवयव, और शिथिल पड़ जाता है तो वो हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं अवयव। ऐसे जन्म मरण एकदम पास में नहीं आता, जन्मना और मरना यही व्यापार नहीं होता, बीच में स्थिति काल भी रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच वाला समय बढ़ जाता है, तो माना जाता है जन्म मृत्यु शिथिल हो गया। तो जन्म मृत्यु को शिथिल करने वाले अग्नि विद्या को भी कठोपनिषद में बताया गया है ना, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली उपनिषदों में कई एक उपासनाएं भी बताई हैं। वे जन्म मृत्यु के बीच वाला जो समय है स्वर्ग आदि की उपलब्धि करा करके कम ज्यादा बढ़ाती है जन्म और मृत्यु के बीच वाले अंतराल को। इसलिए माना जाता है जन्म मृत्यु शिथिल हो गया, जिसका यह अंतराल बढ़ गया उसका जन्म मृत्यु शिथिल हो गया, और जिसके जन्म और मृत्यु में अंतर बहुत कम है उसका जन्म मृत्यु ठोस माना जाएगा, पास पास में है, जुड़ा हुआ है। जिस वस्त्र के धागे बहुत पास पास में जुड़े हुए रहते हैं वो थोड़ा मोटा होता है, और दूर दूर है धागे तो पतला सा होता है, जाला जैसा ऐसा, तो वो शिथिल माना जाता है। तो शिथिल भी कर देती है ब्रह्म विद्या का मतलब वो उपासनाएं, सगुण उपासनाएं आदि ब्रह्मलोक में आपको पहुंचा करके आपके जन्म मृत्यु के बीच वाले समय को लंबा कर देती है। तो जन्म मृत्यु को शिथिल कर दिया, संसार को शिथिल कर दिया, तो माना जाता है अवसादन कर दिया। जिसने वो अवसादन करने वाली भी उपनिषद कहलाती है, वो भी सगुण ब्रह्म विद्या करती है। सगुण ब्रह्म विद्या कहा जाता है उपासनाओं को, वो करती है, इसलिए उसे भी कहा जाता है उपनिषद शब्द से। तो उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ एक वृत्ति, और उस वृत्ति के प्रकार हुए दो, एक तो निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कारात्मिका, जो बिल्कुल जन्म मृत्यु को आपको छूने ही न दे, वो जन्म मृत्यु को समाप्त कराने वाली और आपके खोए हुए यानी विस्मृत हुए ब्रह्म भाव को आपको उपलब्ध कराने वाली वो निर्विशेष ब्रह्म विद्या है साक्षात्कारात्मिका बुद्धिवृत्ति, वो उपनिषद शब्द का एक अर्थ। और एक उपनिषद शब्द का अर्थ होता है वो बुद्धिवृत्ति जो उपासनात्मिका है, वो भी बुद्धि से ही होती है, उपासना मानस कर्म है ना, उपासना भी वो वृत्ति रूप ही है। ये नहीं कि आप कहीं उपासना का प्रतिपादन करने वाला किसी उपनिषद का कोई प्रकरण पढ़ लिए और या उसका पाठ कर लिए तो उपासना हो गई, ऐसा नहीं। वो ही जब परिपक्व होती है उसका अनुष्ठान करना होता है, और अनुष्ठान से उपासना का जब परिपाक होता है, उपास्याकार चित्तवृत्ति सुदृढ़ होती है, तब अंतिम समय में भी उपास्याकार ही वृत्ति बनती है, तो उपास्य लोक में जाता है और उपास्य का या तो सायुज्य या तो सामिप्य या तो सारूप्य या तो सालोक्य प्राप्त कर लेता है, वो लोकांतपाती मुक्ति कहा जाता है, उसके जन्म मृत्यु शिथिल हो जाते हैं। वो जो है वो भी ब्रह्म विद्या है, लेकिन सर्वथा ये उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ क्या हुआ, एक आपके बुद्धि की वृत्ति, उसके अवांतर दो प्रकार हुए, और ये तो उपनिषद, प्रत्येक उपनिषद का अर्थ किसी भी ग्रंथ के साथ उपनिषद शब्द लगा हो, चाहे वो गीता के साथ लगा हो, चाहे ईशावास्योपनिषद के साथ लगा हो, या केन के साथ लगा हो, कठ के साथ लगा हो, प्रश्न के साथ लगा हो, वो उपनिषद शब्द मात्र का अर्थ ये वृत्ति है, और वह वृत्ति उत्पन्न होती है इन ग्रंथों से। इसलिए ग्रंथ को भी शब्दों को भी उस वृत्ति का साधन होने के कारण माना जाता है गौण रूप से उपनिषद। लेकिन उपनिषद शब्द का यदि कोई मुख्यार्थ पूछे तो वृत्ति होगी, और गौण अर्थ यदि पूछता है तो ग्रंथ। कोई पूछे कि जनवरी में किस ग्रंथ का प्रवचन हो रहा है तो कहेंगे उपनिषद का, प्रश्न उपनिषद का। तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, फिर ग्रंथ हुआ, प्रवचन का विषय तो ग्रंथ हुआ, लेकिन वो उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ नहीं है। इससे वह वृत्ति बनती है, इसलिए इसे भी गौण रूप से कहा जाता है उपनिषद। और प्रश्न शब्द साथ में जोड़ दिया तो प्रश्न उपनिषद हो गया। यहां प्रश्न शब्द क्यों जोड़ दिया, जैसे पहले की तीन जो उपनिषदें हुई, कठोपनिषद, केनोपनिषद और ईशावास्योपनिषद, इनमें तो ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद के नाम में, नामकरण में उपनिषद शब्द के साथ उन उन ग्रंथ के प्रथम मंत्रस्थ प्रथम शब्दों को जोड़ दिया। ईशावास्यम इसमें से पहले दो शब्द जोड़ दिए तो ईशावास्योपनिषद हुआ उपनिषद शब्द के साथ। केनोपनिषद का प्रथम मंत्र है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, उसमें से पहला शब्द केन जोड़ दिया तो केनोपनिषद ये नाम हुआ। कठोपनिषद में भी पहला मंत्र कहीं कठ शब्द से शुरू होने वाला हो ऐसा नहीं, वहां तो पहला मंत्र आता है उषण वाद स्रवस, तो वहां एक कठ शाखा की है वो कठोपनिषद, कठ नाम की एक शाखा है और उस शाखा की होने के कारण शाखा के नाम से उपनिषद का नाम पड़ा कठोपनिषद। और प्रश्न उपनिषद ये नाम क्यों पड़ रहा है, तो इसमें सुकेशा आदि छह ऋषि हैं, वे आपस में ऐसे सभी के सभी उपासक हैं और उपासना उनकी एक प्रकार से परिपूर्ण हुई है, जिनका कर्म पूर्ण होता है उसे कहा जाता है कृतकर्मा। कृत शब्द का अर्थ होता है कर लिया है, कर्म जिसने उसे कहा जाएगा कृतकर्मा। और कृतोपास्ति यानी कृत यानी कर ली है, उपास्ति यानी उपासना जिसने उसे कहा जाएगा कृतोपास्ति। और जो कृतकर्मा होता है कृतोपास्ति होता है माना जाता है उसे निर्विशेष ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी, जो कृतकर्मा है कृतोपास्ति है। कृतकर्मा होने से चित्त शुद्ध होगा, वैराग्य संपन्न होगा, अंतकरण शुद्धि से नित्यानित्य वस्तु विवेक से संपन्न होगा, अनित्य वस्तु से वैराग्य होगा और नित्य जो वस्तु है परमात्मा उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी मुमुक्षा। और हमारे चित्त और इंद्रियों को बहिर्मुख बनाती है अनात्मा बाह्य पदार्थ विषयनी इच्छाएं ही राग द्वेषी, वे चित्त में नहीं रहेंगे तो शम दमादि साधन आई जाते हैं, तो वो माना जाता है साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म विद्या का अधिकारी। तो ये जो सुकेशा आदि छह ऋषि हैं जो प्रश्नोपनिषद के प्रथम मंत्र में बताए, एक तो सुकेशा, दूसरे सत्यकाम, तीसरे गार्ग्य, चौथे कौशल्य और भार्गव और कबंदी, इन ऋषियों ने एक प्रकार से कर्म और उपासनाएं कर लिया था पहले ही। और जो कर्म उपासनाएं करता है तो कोई जरूरी नहीं कि जब तक आपके चित्त में शुद्धि और विक्षेप राहित्य न हो तो उपनिषदें पढ़ने पर भी और उपनिषदों में परम ब्रह्म इत्यादि नाम आने पर भी, अस्थूलम अनानु इत्यादि मंत्र पढ़ने पर भी उसकी जिज्ञासा होगी ही, ये नहीं होता। सबकी दृष्टि ग्रंथ पढ़ने के बाद हरेक शब्द के अर्थ में जाएगी ही और उसे जानने की इच्छा होगी ही, ऐसा नहीं होता। जब उस शब्द के अर्थ या वाक्यार्थ को जानने की योग्यता बुद्धि में आती है तो जिज्ञासा होती है। तो ये कृतकर्मा होने से, कृतोपास्ती होने से इन ऋषियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई परब्रह्म को जानने की। इसलिए इन छह ऋषियों का विशेषण है कि ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा, परम ब्रह्म अन्वेषमाना, ये तीन तीन विशेषण है। एक तो ब्रह्म पर है, ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्म पर है का मतलब है कि जो अपर ब्रह्म है उसे ही पर ब्रह्म समझ बैठे हैं। ब्रह्म कितने हैं? तो यहां तो कह रहे हैं दो हैं। उपनिषद बता रहा है कि दो हैं। उपनिषद बता रही है दो ब्रह्म हैं। एक अपर ब्रह्म है, दूसरा पर ब्रह्म है। ये वस्तुतः स्वरूपतः ब्रह्म तो एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन उपाधि को लेकर के फिर उसके कई भेद बन जाते हैं। तो एक अपर ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म, अपर उपाधि वाले ब्रह्म को कहा जाता है अपर ब्रह्म, और एक है पर ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म को यानी सोपाधिक ब्रह्म को ही जो पर ब्रह्म समझ लिए उन्हें कहा जाता है ब्रह्म परा। तो ये जो सुकेशा आदि छह ऋषि हैं ये ब्रह्म पर हैं, का मतलब अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझ लिए। जैसे वो कई एक अंधे की कथा आती है ना, मिलकर के जन्मांध मिलकर के हाथी की चर्चा करने लगे कि हाथी कैसा होता है। तो कोई कहने लगा कि लंबे पिलर जैसा होता है, तो कोई कहा कि मुसल जैसा होता है, तो कोई कहा कि सूप जैसा होता है, तो ऐसे ऐसे कहने लगे। यानी हाथ को, यानी जिनका नेत्र इंद्रिय काम नहीं करता तो उन्हें या तो श्रवण इंद्रिय से, बाकी इंद्रियों से ही अर्थ का ग्रहण करना होता है ना। तो हाथी का ग्रहण किससे होगा? वो स्तोग इंद्रिय से। तो किसी ने सूंड को पकड़ा, तो किसी ने कान को पकड़ा, तो किसी ने पैर को पकड़ा, तो वैसा वैसा वर्णन करने लगे। तो उनके दृष्टि में तो हाथी, जिसके हाथ में सूंड आई वैसा ही है, जिसके हाथ में पैर आए तो पिलर जैसा ही है, जिनके हाथ में वो कान आया तो सूंड जैसा ही है। तो ऐसा अलग अलग समझने लगे ऐसे। और वो निश्चय उनका वही रहता है, और कोई आंख से युक्त पुरुष आकर के उसे समझा, उन सबको समझा दे कि ये हाथी नहीं, ये तो हाथी का एक एक अंग है, और हाथी तो ये अवयवी है, इन सब अंगों से मिलकर के हाथी बनता है। तो एक आकार बना लेंगे कि बुद्धि में कि ऐसा ऐसा हाथी होगा करके अनुमान करेंगे। ऐसे ही इन लोगों को जो कार्य उपाधिक ब्रह्म है, जिसे अपर ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा जी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वैश्वानर कहा जाता है, इसे ही ये समझ लिए कि यही पर ब्रह्म है। उन्हें कहा गया ब्रह्म परा और ब्रह्मनिष्ठा, इसलिए उसी का ब्रह्म रूप से चिंतन करते 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 मैंने उपासना कर दी। तो ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है कृतोपास्ती, इसी को ब्रह्म समझ करके ब्रह्म रूप से चिंतन करके परब्रह्म रूप से सुनिश्चित कर लिया। पहले शास्त्र से जान लिया कि यही ब्रह्म है तो ब्रह्म पर हो गए, और फिर उसी का ब्रह्म रूप से चिंतन करते करते निश्चय अंदर से हो गया तो माना जाता है कृतोपास्ती हो गए, वे हो गए ब्रह्मनिष्ठ। लेकिन सगुण ब्रह्म भी उन्हें कहीं लोकेशना नहीं है, सगुण ब्रह्म को भी लोकेशना यदि होती है तो कोई किसी के वाह वाह करने वाले लोग मिल जाते हैं तो चाहते हैं कि हमेशा हमारे मृत्यु तक यही करते रहे, वाह वाह ये हमारी चार पर ऐसे लगे रहे हमारे साथ, हमारे गुणगान करते रहे। लेकिन सगुण ब्रह्म ऐसा नहीं होता। सगुण ब्रह्म इस लोकेशना आदि से पर होता है। जिसको लोकेशना की इच्छा है वो तो हो सकता है कि चाहे कि हमारे साथ ऐसी हमारी प्रशंसा करने वाले वाह वाह करने वाले अनुयायी बने रहे, करते रहे वाह वाह। लेकिन सगुण ब्रह्म भी क्या करता है कि जब उपासना का परिपाक हो जाता है सगुण ब्रह्म के, तो निर्गुण ब्रह्म की जिज्ञासा कराता है। अपर ब्रह्म पर ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न कराता है। तो अपर ब्रह्म की उपासना परिपूर्ण हुई, इनकी कृतोपास्ति हो गए, चित्तगत दोष दूर हो गया, कर्म और उपासना से मल विक्षेप की निवृत्ति हो गई, तो आवरण दोष की निवृत्ति के लिए ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो ज्ञेय ब्रह्म की जिज्ञासा इनके चित्त में हुई, उन्हें कहा गया उनकी ज्ञेय ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को दिखाने के लिए कि परम ब्रह्म अन्वेष माना ये सुकेशा आदि छह के छह ऋषि पर ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं। एक बार एक साथ बैठे और सब पर ब्रह्म की जिज्ञासा से संपन्न होकर के पर ब्रह्म की चर्चा करने लगे। अंदर से ऐसा होता है, ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसी होती है। सच्चाई से सगुण ब्रह्म का भी दामन पकड़ लेता है कोई, तो सगुण ब्रह्म धीरे धीरे अपने उपासक को फिर निर्विशेष के ओर ले जाता है। इसलिए किसी ने कहा कि दासोह मितिया बुद्धि पुरासिद यदुनंदने, दास शब्द चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, तो भगवान की भक्ति में हम लग गए, लेकिन हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि भगवान को अपना वसुदेव और देवकी के तरह पुत्र समझ करके उनकी भक्ति करे, संबंध बना ले। तो हम तो उनके दास बनने योग्य हैं, तो मान लिया भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। तो यदुनंदने यानी कृष्ण दासो अहम इति बुद्धि पुरा आसीत, कि कृष्ण में कृष्ण का मैं दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये संबंध जोड़ करके मैं उनकी सेवा में लग गया। लेकिन बचपन की पड़ी हुई आदतें बड़े होने पर भी जाती नहीं है। बचपन में मक्खन चोरी आदि करते करते चोरी करने की आदत पड़ गई ना। तो सुनार कहते हैं सोना चोरने की आदत पड़ती है तो अपने संबंधियों को भी छोड़ता नहीं, आप सामने बैठोगे तब भी सोना जब गर्म करता और फूंक मारता है तो फूंक के साथ साथ जिस फूंकनी से मारता है फूंक, उस फूंकनी में ही खींच लेता और मुंह में रख लेता है, आपको पता ही नहीं चले, और फूंक मारे बिना तो वो सब बनेगा ही नहीं। तो सामने रह करके भी बराबर आप ये नहीं कर सकते कि सुनार से हम अपना सोना बचा दे, जितना उसको उसमें से निकालना है वो निकाल ही ले लेता, ऐसे क्योंकि आदत पड़ी रहती है, अभ्यास होता है ना। तो कृष्ण का भी अभ्यास यही है चोरी करने का। तो चाहे उसके दास बनो या कुछ भी बनो, वो चोरी करेगा आपकी। तो कहा कि दास की क्या चोरी करेगा, तो दास शब्द चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। तो कृष्ण ने दास शब्द की ही चोरी कर दी, दासो अहम इसमें से दास शब्द को हटा दिया, कब हटा दिया पता ही नहीं चला, तो छुरी मानी जाएगी ना। तो फिर बचा क्या, दासो हम में से दा हटा देंगे तो सो हम, तो सगुण ब्रह्म है कृष्ण, उसके साथ आपने संबंध जोड़ दिया, उनकी उपासना कर दी, कृतोपास्ति बन गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए का मतलब कृतोपास्ति हो गए। तो उपासना दास भाव से भी करोगे तो भगवान एक ऐसे हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि मेरा दास हमेशा के लिए दास ही बना रहे, वह अपना स्वरूप प्रदान करता है। तो सोहम बना देते, स का अर्थ है वो कृष्ण परमात्मा, ज्ञेय ब्रह्म परब्रह्म, और वो मैं हूं, ऐसी अनुभूति अपने दास को भी परमात्मा कराते हैं। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है अपर ब्रह्म को ही परब्रह्म रूप से चिंतन करते करते कृतोपास्ति हो गए हैं, उनके अंदर परब्रह्म की जिज्ञासा कराते हैं, और परब्रह्म की जिज्ञासा से संपन्न ये छह ऋषि एकत्रित होकर के परब्रह्म का अन्वेषण करने लगे, खोज करने, अन्वेषण करते खोज को, खोजने लगे परब्रह्म को कि कहाँ है वो, कैसा है। तो उन्होंने देखा कि हम तो उस परब्रह्म की खोज कर नहीं सकते, लेकिन इस समय परब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आचार्य पिपलाद जी, क्यों ना हम सब उनके विद्यालय में जाकर के एडमिशन लें और परब्रह्म की जिज्ञासा जो है उसे शांत कर लें। तो उनके पास जाते हैं, उनके गुरुकुल में जाते हैं और उनके पास प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परब्रह्म का ज्ञान कराइए। वे कहते हैं कि 24 घंटे तो प्रतीक्षा करो, फिर बताएंगे कि आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो कल 7:30 बजे बताएंगे कि वो कबंधी आदि ऋषियों को, सुकेश आदि ऋषियों को अपने गुरुकुल में प्रवेश देंगे कि नहीं। हरिओम।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। मोती में शिव की बातें हम सुनते ही हैं, और सालों साल संत जब भी आते हैं तो हम वो शिव को ढूंढते रहते हैं कि वह शिव हमें प्राप्त हो। जो महाराज जी ने बताया ना फूक मारने की बात, कुछ कुछ सोना अपने मुंह में आ जाता है, वैसे हम सत्संग की फूक मारते रहते हैं सालों साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, मगर पता नहीं वो सोना है कि पीतल है क्या जाता है अंदर, कुछ दृढ़ नहीं होता है। और जब महाराज जी आते हैं तो ऐसा लगता है कि मोती के सीप के बहुत करीब है, क्योंकि उनकी वाणी में इतनी सत्यता और सार्थकता है जो हमें चुभ जाती है, और ईश्वर की कृपा भी है, और महाराज जी की कृपा तो और है कि पूरे जनवरी हमें यह प्रश्नोपनिषद का ज्ञान मिलेगा, एवं जो स्वाध्याय है उसमें भी पंचदशी पूज्य महाराज जी के साथ हम चलेंगे। बड़े भाव से नए साल का प्रणाम करते हैं, और महाराज जी की परम कृपा प्रेमपुरी आश्रम पर ट्रस्टी के रूप में तो है ही है। अब शांति पाठ होगा।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।